बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में कबायली इलाकों में फ़ौजी कार्रवाई और लाहौर में मिनहाजुल कुरान के सदर दफ्तर पर पुलिस का हमला। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत ने कई दिन से शिमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है और फ़ौज के हवाई हमलों में अब तक दर्जनों इंतहा पसंद दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद गैर मुल्की दहशतगर्दों की है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी एक करारदाद पास करके तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान किया है। फ़ौज के सरबराह ने दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी एक से ज़ायद बार पूरी क़ुव्वत के साथ फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत और उसको जारी रखने पर ज़ोर दिया है। दूसरी तरफ लाहौर में इदारे मिनहाजुल कुरान के ख़िलाफ़ पुलिस के ऑपरेशन के बाद पुलिस और मिनहाजुल कुरान के कारकुनों नीज़ अल्लामा ताहिरुल कादरी के तरफदारों के दरमियान तसादुम में बताया जाता है कि 8 अफराद मारे गए। आज के प्रोग्राम में हम पहले वज़ीरिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद लाहौर में अल्लामा ताहिरुल कादरी के इदारे मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी दफ्तर के ख़िलाफ़ पुलिस के ऑपरेशन, इसके मुहर्रिकात और नतायज का जायज़ा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई, कबायली इलाकों के अवाम की दरबदरी और मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटरीट पर हमले के बाद इस मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि रियासत के हिस्से से पाकिस्तान दो जंगें लड़ रहा है। अफवाज दहशतगर्दों से नबर्द आजमा है और हुकूमत तबाह हाल मईशत को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अलबत्ता पाकिस्तानी वजीर आजम ने लाहौर में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमारी अफवाज दहशतगर्दी के इफरीत से नबर्द आजमा है और मुल्क की अंदरूनी सलामती को दांव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने शुमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के फैसले की हिमायत करते हुए कहा था कि दहशतगर्दी से मुल्की मईशत को $1 खरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने नेक नियति से अमन मुज़ाकरात शुरू किए, जबकि दूसरी जानिब से मुसलसल कौमी तनसीबात को निशाना बनाया जाता रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए इस अज़्म का अदा किया था कि ऑपरेशन दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। खबरों के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों में सैकड़ों दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत उज़्बक शिद्दत पसंदों की है, लेकिन चूंकि इस ऑपरेशन में फजाई हमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी फौज को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। अलबत्ता पूरे इलाके से नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी खदशा है कि फौज की कार्रवाई में शिद्दत के साथ ही तालिबान भी अफगानिस्तान भाग जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से टेलीफोनी गुफ्तगू में उनसे अपील की है कि वो अपनी सरहदें सील कर दें। फौज के इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है और इस तरह से इस ऑपरेशन को कुछ तजिया निगार पाकिस्तान का कौमी मुतालबा भी करार दे रहे हैं, और ये यकीनी तौर पर वो वक्त है जब पूरे मुल्क में सियासी इत्तेहाद भी इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे आलम में कि जब हुकूमत और फौज शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ है, लाहौर का वाकया और कई कीमती जानों का ज़िया बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज़ है। हालांकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी सिलसिले में कहते हैं कि हुकूमत उनकी पाकिस्तान आमद की खबर से बौखलाहट का शिकार है और कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम कुछ तजिया निगार पाकिस्तान के मौजूदा हालात में लाहौर वाकये की वजह इतनी मामूली नहीं समझ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान दो जंगें लड़ रहा है, मगर हालात से यही महसूस होता है कि पाकिस्तान को कई महाजों पर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और पाकिस्तान में हालात को मामूल पर लाने के लिए इस मुल्क को एक दो नहीं कई जंगें लड़नी होंगी।
हमारे आज के प्रोग्राम में लंदन से शिरकत करेंगे बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर कैसर इमाम, कराची से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और लाहौर से आज की बहस में शामिल किया जाएगा जमात इस्लामी पाकिस्तान के एक रहनुमा मोहम्मद फारूक चौहान को। گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن سے۔ اس کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پاکستان کے سینئر صحافی آغا مسعود حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آغا مسعود حسین صاحب، السلام علیکم۔ جی آغا صاحب، شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کس مرحلے میں ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان میں عام خیال، عام تاثر کیا ہے؟
دیکھیے، پاکستان میں عام تاثر تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کے سلسلے میں پاکستان کے کسی گوشے میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباہ کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو جس طرح قتل و غارت قتل کیا ہے، پاکستان کے کم از کم 50,000 اس میں فوجی بھی شامل ہیں، پولیس بھی شامل ہیں، رینجرز بھی شامل ہیں، اور اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا ہے، تو ان کے لیے انتہائی نفرت پائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو تباہ کیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں اور پاکستان کی نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ سے، پاکستان کی ریاست سے جنگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ انسانیت سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور پھر یہ دوسری جو سامراج ممالک ہیں، یہ ان کے اہلکار ہیں، یہ مسلمان نام کے ضرور ہیں کہ ان کے مسلمان نام ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلام کے خلاف بھی ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ان تمام جو سامراجی قوت ہیں ان کے اہلکار بن کے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اور اسلامی ممالک میں بھی تقریباً ان کے ڈانڈے پھیل چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور پاکستان کے اور بھی جو کالم لکھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی فوج نے ایک ہی پیج پہ آ کے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بڑا بروقت فیصلہ ہے، ورنہ صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا اور تقریباً 27 جانیں جو ہیں اس پہ تلف ہوئیں، تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج اس مسئلے پہ غور و خوض کر کے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ان خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، اور جہاں سے یہ لوگ غیر ملکی طاقتوں کے جو اہلکار عراق کی طرف آ رہے ہیں، شہروں کی طرف، موصل پہ جو قبضہ کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اسی قسم کے یہ دہشت گرد اور یہ کرائے کے قاتل، اگر ان کو ہم نے پاکستان میں اس طرح آزاد چھوڑ دیا، تو پھر یہ بھی وہی حرکت کریں گے کہ جو اس وقت عراق میں ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ یہ بات جو ہے، یہ بات بڑی تفصیل سے اس پر بحث ہوئی، اور بحث ہونے کے بعد یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے، انف از انف، اب ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے۔ ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام اسمبلیوں نے، صوبائی اسمبلیوں نے، قومی اسمبلی نے اکثریت رائے سے حکومت کے اور فوج کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ان دہشت گردوں کو جو کہ بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہم جنگ کریں گے، اور جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کا صفایا نہیں ہو جاتا۔
بہت بہت شکریہ جناب۔ اور ناظرین، چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ جی
قیصر امام صاحب، اگر آپ نے آغا مسعود حسین صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہو، تو طالبان کے خلاف جو آپریشن اس وقت شمالی وزیرستان میں چل رہا ہے، جس کے لیے فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں حکومت اور فوج کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، بلکہ پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، آغا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عراق میں تکفیری دہشت گردوں نے، دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نے جس طرح سے وہاں پر دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے، اور جس طرح وہاں بے گناہ عوام کا، شیعہ سنی سب کا قتل عام انہوں نے کیا، اس کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کے خلاف اگر یہاں پر سخت کارروائی نہ کی گئی، تو ممکن ہے کہ طالبان بھی وہی کام یہاں پر کریں، اگرچہ محدود پیمانے پر طالبان اب تک یہ کام کرتے رہے۔ بہرحال، آغا صاحب کا جو یہ خیال ہے کہ عراق کے حالات کے پیش نظر پاکستان میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟
मैं समझता हूँ कि आगा साहब की नज़र माशाल्लाह बहुत वसी है इन मामलात पर, और वो बहुत अच्छी बातें अक्सर करते हैं।
जी
लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि इराक़ में जो हालिया वाक़यात हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान के सामने सिर्फ वही एक चीज़ नहीं है, वही एक बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। एक बड़ा तवील अरसा है ये, और उसके सामने हुकूमतें जो हैं वो बेबस रही हैं, लेकिन हुकूमतें कुछ ना कुछ करना तो चाहती रही हैं हमेशा। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो कुछ हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इराक के वाकयात जो हैं वो आंखें खोलने के लिए बहुत मुआविन साबित हुए होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इस कदर ज़्यादा इनमें इजाफा हो चुका था, लोगों के अमवात में, हलाकतों में, और जो बिल्डिंग्स के तहस नहस करने में, और हुकूमत के जो इदारे हैं, जो फौजी इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनको जिस तरह से बर्बाद किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के सामने रही हैं, और हुकूमत ने जब मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था इसी प्रोग्राम में कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो नहीं सकते, इसलिए कि इन मुज़ाकरात में ना तालिबान शामिल थे, ना हुकूमत शामिल थी। वो कोई कमेटी उनकी तरफ से थी, कोई कमेटी उनकी तरफ से थी, और वो लोग ये काम कर ही नहीं सकते थे, और ना ही ये बात मुमकिन थी कि एक ग्रुप या दो ग्रुपों के साथ आप मुज़ाकरात करें और बाकी सारे ग्रुप जो हैं उनको छुट्टी दे दें कि वो जिस तरह से चाहें मुल्क में तोड़ फोड़ करें और हिलाकतें करें। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें मिलकर इस फैसले पर पहुंचने में मुआविन साबित हुई हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तहम मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि इराक के हालात में और पाकिस्तान के हालात में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, और उसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब ये ऑपरेशन किया जा रहा है तो इसके साथ ये हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं जिनमें बेशुमार बच्चे और बूढ़े और औरतें शामिल हैं, उनकी नकल मकानी के मसाइल भी हैं। इसके लिए अगरचे हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं और कैंप भी खोल दिए हैं बन्नू के करीब, बहुत से दो कैंप तो बन्नू के करीब खोल दिए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये ज़रूरी है कि इनका कला कमा करने के लिए पहले से ही कोई इकदाम किया जाता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो कुछ कर रही है, फौज जो कुछ कर रही है, जिस तरीके से ये हो रहा है, उसमें ये सारी बातें, इराक के हालात, अफगानिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हालात, और हिंदुस्तान से जो कुछ भी पाकिस्तान में मुदाखलत वगैरह के मामलात होते हैं, उन सब के मद्देनज़र ये ज़रूरी था और ये ज़रूरी समझा गया कि अब ये जो ऑपरेशन है इसको बाकायदा अमल में लाया जाए। सो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आगा साहब की बात से मैं इख्तराफ नहीं करता इस हद तक, लेकिन ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये पाकिस्तान के अपने हालात भी ऐसे थे जिसके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि ये मुज़ाकरात को छोड़कर ऑपरेशन की राह अख्तियार की जाए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगा मसूद हुसैन साहब, जनाब ऑपरेशन के ताल्लुक से एक बात जो इस वक्त है वो ये है कि इस बार जैसा कि आपने इशारा किया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने मुत्तफ़ा तौर पर करारदाद पास की है, इसकी हमायत का ऐलान किया है। रिपोर्टें ये बताती हैं कि तमाम सियासी जमातों ने इसकी हमायत का ऐलान किया है, कहीं से मुखालफत में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जबकि इससे पहले जब भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात की गई या ऑपरेशन किया गया तो किसी न किसी हलके की जानिब से कुछ मुखालफत ज़रूर सामने आई है। इस बार जो कहीं से मुखालिफ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इसकी क्या वजह है?
बात दरअसल ये है कि इसकी आवाज़ इसलिए सुनाई नहीं दे रही है कि आपको मैं एक और बात बताऊं। इमाम साहब ने जो बात की वो बहुत ही खूबसूरत तज़िया उन्होंने फरमाया है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात यकीनी तौर पर इंतहाई नागुफ्ते भी हैं। लेकिन इसके साथ है ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान पर इन तालिबान के खिलाफ काम करने के कार्रवाई करने के सिलसिले में अमरीका का भी दबाव था पाकिस्तान पे, کرزئی صاحب کا بھی دباؤ تھا، ہندوستان کا بھی دباؤ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرزئی صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا تھا، جس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے امریکہ سے درخواست کی تھی اگر پاکستان کی فوج شمالی وزیرستان میں کاروائی نہیں کرتی تو میں امریکی سپاہیوں سے، ان کے سولجر سے درخواست کروں گا کہ وہ قدم بڑھائیں اور جا کے وہاں پہ جو ان کے ایپی سینٹر ہے، جو ان کے مراکز ہیں، ان کو تباہ کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب جب بھی وہ کسی غیر ملکی دورے پہ جاتے تھے اور پاکستان کا حوالہ آتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو شمالی وزیرستان ہے وہ ایپی سینٹر ہے۔ اور خود آپ کو معلوم ہے کہ ہلری کلنٹن جو کہ امریکہ کی سابق سیکرٹری خارجہ تھیں، انہوں نے بھی کئی بار کہا ڈو مور ڈو مور۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سماجی حالات، پاکستان کے سیاسی حالات اور اس کے علاوہ بیرونی دباؤ، اس کی وجہ سے بھی جی پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک طرف تو پاکستان بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی قوت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت جو ہے ان کی مخالفت نہیں کر رہی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے کوشش کی مطلب بولنے کی قومی اسمبلی میں، تو وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا انہوں نے، اور انتہائی بودے قسم کے انہوں نے دلائل دیے کہ اس سے بچے متاثر ہوں گے، کولیٹرل ڈیمیج ہوگا۔ تو اسی طریقے سے سمیع الحق صاحب نے بھی کوشش کی، جو کہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی حمایت کرتے تھے جب متحدہ مجلس عمل بنی تھی، اس زمانے میں بھی یہ ان لوگوں کی حمایت کر کے ان کے حوصلہ بڑھاتے تھے، اور انہوں نے یہ اندرونی خانہ میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو آگے کر کے ہم پاکستان کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی پوری قوم، بچہ بچہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام جو بدنام ہو رہا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ باہر آ کے جو ہے ان کے حمایت میں کوئی بات کر سکتے۔ تو آج اسی وجہ سے جو ہے نا، جو عوامی دباؤ ہے، جو عوام کا ایک رد عمل ہے کہ عوام جو ہے بالکل ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے متحد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بالکل خاتمہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا تھا، انف از انف، اور یہ نواز شریف صاحب نے ابھی تاجکستان میں جو جملے استعمال کیے ہیں، میں اس جملوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دو جنگ لڑ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے اندر افراتفری مچائے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے سماج اور معاشرت کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جنگ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے اپنی اکانومی ہے، وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی شرح نمو 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہے، اور جبکہ پاکستان کی آبادی جو ہے مستقل بڑھ رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کا سماجی نظام بھی مضبوط نہیں ہوگا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو موقع ملتا ہے اپنا کھیل کھیلنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت نے سوچا، فوج نے سوچا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فوج تو بہت پہلے سے تیار تھی ان کے خلاف ایکشن کرنے میں، لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب کیونکہ طالبان کے سلسلے میں ماضی میں ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، بلکہ پنجابی طالبان نے ان کو بہت زیادہ ووٹ ڈلوائے تھے، اس وجہ سے ذرا سا وہ خائف تھے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور کوئی بھی جو ہے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت اور پاکستان سے بیرونی قوتیں جیسے ہندوستان ہے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناؤ دس از دا ہائی ٹائم دیٹ وی مسٹ آس دی آرمی آف پاکستان ایکچولی ٹو ایکٹ اگینسٹ دیز ٹیررسٹ ان نارتھ وزیرستان۔ تو یہ ہوا ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ، اور بڑی ڈسکشنس ہوئی ہیں، اور یہ مذاکرات وغیرہ جو تھے یہ اس لیے کیے جا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اپنی پوزیشن کو بچانا چاہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ عوام جو ہیں وہ تنگ ہیں، تنگ آمد، تو پھر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی پاکستان کی فوج کارروائی کر رہی ہے وہ اس کارروائی کے نتیجے میں اچھے نتائج ہوں گے۔ اور جہاں تک امام صاحب نے ایک بات بہت اچھی بات کہی کہ جو سویلین ہیں ان کے مطلب وہ جب بے دخل ہوں گے یا ان کو ڈسلوکیٹ ہوں گے تو ان کا کیا کیا جائے گا، تو میں ابھی ایک لاجسٹک پڑھ رہا تھا جو حکومت پاکستان کی طرف سے آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کیمپس لگائے ہیں، اور کیمپ لگانے کے بعد ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، پھر انہوں نے سرنڈر پوائنٹ بھی بنائے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہتھیار حکومت کے سامنے پیش کر دیں گے ان کو امان دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک عام شہری کے طریقے سے ان کو سہولتیں دی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا کمپریہنسو ایک جامع پلان تیار کیا گیا ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بہت عرصے تک جاری رہے گی۔
بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ اور ناظرین چلتے ہیں لاہور، فاروق چوہان صاحب سے رابطہ برقرار ہو گیا ہے، جماعت اسلامی پاکستان کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی چوہان صاحب، السلام علیکم۔ چوہان صاحب سے، جی جی چوہان صاحب، السلام علیکم جناب۔ جی چوہان صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہم تک، چوہان صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، تب تک قیصر امام صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی قیصر امام صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے جب بھی طالبان کے خلاف قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع کیا گیا یا آپریشن کی حتیٰ بات بھی کی گئی تو ایک طبقے کی جانب سے اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن اس بار اگرچہ جیسا کہ آغا مسعود حسین صاحب نے کہا کہ بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے اس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن مخالفت بھی سامنے کھل کر نہیں آئی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپریشن کے تعلق سے پورے پاکستان میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے،
جی
اتفاق رائے مکمل طور پر نہیں ہے۔ اس میں جو جو اقدام کیا جا رہا ہے اس میں بعض حلقوں کی طرف سے مین میک نکالی جا رہی ہے۔
جی
مثال کے طور پر دیکھیں، فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے فوج کی بجائے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا فوج کو، بلکہ پارلیمنٹ سے کروانا چاہیے تھا۔ پھر دوسری طرف سے عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپریشن ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات بھی شامل ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں اس سے پہلے اس کی مخالفت کر رہی تھیں آپریشن کی اور مذاکرات پر زور دے رہی تھی، وہ اب بھی نپے تلے الفاظ میں اس کی خواہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر کسی نہ کسی رنگ میں تھوڑی بہت مخالفت اس میں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپریشن اس طرح سے کیا جائے۔ بعض جماعتوں نے اس کا ایک اور پہلو نکالا ہے، جس میں جماعت اسلامی خاص طور پر میں عرض کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ آپریشن میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں سویلین لوگ جو ہیں یہ بہت مارے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری مین میں ایک جو نکالی جا رہی ہے یہ مخالفت کے مختلف پہلو ہیں، پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اپنے دل سے شامل نہیں ہیں، خلوص اور نیک نیت اس سے شامل نہیں ہیں، لیکن حکومت کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ رہ نہیں گیا تھا، ورنہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ تو برباد ہو رہی تھی بالکل مکمل طور پر۔ سو جیسا آپ نے فرمایا، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے کہ تمام تر پاکستانی جو ہیں وہ اس کے حامی ہیں، اس کی دینی جماعتیں خاص طور پر اس کی حامی نہیں ہیں۔
جی آغا صاحب، آپریشن شروع ہونے کے بعد طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا گروہ اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو کیا اب بھی طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا کوئی امکان باقی رہ جاتا ہے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے ایک بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ مظاہرہ یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر پوائنٹس جو ہیں وہ قائم رکھے ہیں۔ اس سرنڈر پوائنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی ریاست سے نہیں لڑنا چاہتے اور ایک پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو وہ خوش آمدید، چشمے ما روشن، دل ما شاد، لیکن اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی فوج تیار ہے۔ اور جہاں تک دیکھیے مذاکرات کا تعلق ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سمیع الحق ہوئے یا پروفیسر ابراہیم ہوئے، دیکھیے یہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور درون خانہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی سے یہ وسائل بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ خود بھی سنسیئر نہیں تھے۔ آج جب یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا سمیع الحق اور پروفیسر ابراہیم بڑے دعوے کرتے تھے کہ اس سے بہت خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، جب انہوں نے دیکھا کہ عوام ساتھ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اب ان کے لب خاموش ہو گئے اور یہ اب زیادہ نہیں بول رہے۔ مگر میں آپ سے بتا دوں کہ خود اگر یہ نہ بھی چاہیں تو لیکن پاکستان میں کم از کم یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں वो इनसे इंतहा से ज़्यादा नफरत करते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, पाकिस्तान की रियासत को तबाह किया है, पाकिस्तान को बदनाम किया है, इस्लाम को बदनाम किया है। इस्लाम के नाम पे जो ये कार्रवाई करते हैं वो भी मतलब वो लोगों लोग उनको पसंद नहीं करते बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुखालफत तो देखिए पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है कि जहाँ पर तनकीद बराए तनकीद मुखालफत बाय मुखालफत अक्सर होती रहती है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो भी पहले तजब्बुब का शिकार थी, वो भी नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से जो है वो ऑपरेशन हो जाए। बहुत मज़ाकरात की कोशिश की, 6 महीने तक मज़ाकरात चलते रहे। सेप्टेम्बर से लेकर आज जून की तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये मज़ाकरात की सब बात कर रहे थे। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला आप यकीन करें कि जो लोग हुकूमत में शामिल थे उन तक को भी नहीं मालूम था कि किन नुकात पर बात करनी चाहिए, कौन से वो लोग हैं कि जिनसे हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि तालिबान का कोई एक ग्रुप तो नहीं है, तालिबान के तो बहुत से ग्रुप है और उन ग्रुपों में आपस में भी लड़ाई हो रही है। आपको मालूम है एक तरफ तो पाकिस्तान की फौजी ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ वो जो ग्रुप है जो आपस में भी लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। अब तक आज की तारीख में तकरीबन 12-13 लोगों को मारा है एक दूसरे के खिलाफ असलहे से। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जी हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इस बात पर बड़ी गहरी निगाह रखनी चाहिए कि हमारे जो खत्ते के ममालिक हैं जिसमें ईरान भी शामिल है, हम खत्ते के ममालिक को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। खत्ते के ममालिक बेचैन हैं, मुस्तरब हैं, वो जानते हैं कि वहां से
शुक्रिया जनाब
कार्रवाई होती है, छुप जाते हैं, वहां की टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है, वहां पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां भी आप देखें कि मैंने बहुत से मतलब अखबार का मुताला किया मैंने तो जी
हम आएंगे दोबारा आपकी तरफ। चौहान साहब से राबता हमारा बरकरार हो गया है, हम देखना चाहते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
जनाब तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है शिमाली वजीरिस्तान में, इस ऑपरेशन के बारे में आपका और आपकी जमात का मौकिफ क्या है?
देखिए बात मैं भी सुन रहा था जो मेहमानों को आपने बुलाया हुआ था। देखिए मसला ये है कि इसको समझने की जरूरत है कि असल फसाद की जड़ अमरीका है। अमरीका इस खिते में जो मौजूद है, जब तक उसका एक सिपाही भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, नेटो फोर्सेस मौजूद हैं, ईरान को भी खतरा है, पाकिस्तान को भी खतरा है और भी इस्लामी ममालिक जो हैं उनको खतरा इस रीजन के अंदर, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है मैं आपसे करना चाहता हूँ गुजारिश के असल मामला ये है कि इसको फलसफियाना इसको अंदाज में इसको उठाना और बात को पेचीदा बना देना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन असल बात यह है जिसकी तरफ हमें आना चाहिए कि सोवियत यूनियन जब उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, अमेरिका यहाँ पे आया, अमेरिका अपने मफादात के लिए यहाँ पे आया, अमेरिका ने ये जो आज जिन्हें तालिबान कहा जा रहा है उससे पहले वो मुजाहिदीन की सूरत उनका नाम लिया जाता था, अफगान मुजाहिदीन को। ये अफगान मुजाहिदीन को बनाने वाला कौन था? ये अमेरिका था। अमेरिका ने इनको क्या, अमेरिका ने उस वक्त इनके अमेरिका के नज़दीक ये हीरो थे, मुजाहिदीन थे, बाद में ये दहशतगर्द हो गए, ये तालिबान की सूरत में आए तो और बड़े दहशतगर्द हो गए। और जब अमेरिका ने 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और उसके बाद जब यहाँ पे एक रद्द अमल जो फितरी रद्द अमल था, आपको पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका खुदा ना खास्ता कब्जा करता है, ईरान के पे करता है, तो ये एक फितरी रद्द अमल होता है जो वहां से उठता है। जब फितरी रद्द अमल के तौर पे जो सोवियत यूनियन का असर हुआ, आज अमेरिका वहां से जा रहा है। अब आप देखें एक तरफ हमें कहा जाता है कि शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करो, अमेरिका का दबाव है, और ये मैं आपको साफ साफ वाजे तौर पे बताऊं ये हकीकत है कि ये जो शिमाली वजीरिस्तान पर हमला हुआ है ये अमेरिकी ड्रोन हमले से इसका आगाज हुआ है, आपको इलम है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ISPR ने फौज ने उसको 2 दिन पहले शुरू किया और हमारे वजीर दिफा उसने उसको एक दिन बाद अगले दिन मीडिया पर आकर बताया कि ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। देखिए किसी भी मसले का हल ये होता है जब ये मुज़ाकरात की मेज सजाई गई गई थी, आपको इलम होगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में लास्ट ईयर सितंबर के अंदर, और सितंबर में उसमें APC हुई थी, उसमें मैंडेट दिया गया था मुज़ाकरात के लिए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो उन मुज़ाकरात को किन बैरूनी ताकतों ने नाकाम बनाया, उसमें अमेरिका का जो दबाव था वो सब चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने उसको आवाम के सामने लेके आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, कौम को एतमाद में नहीं लिया गया। पार्लियामेंट को अगले 2-3 दिन 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने जाके एतमाद में लेने की कोशिश की। दुनिया के अंदर चीज़ें जो हैं डायलॉग के जरिए हल होती हैं। आयरलैंड को हमने देखा, आयरलैंड का मसला भी डायलॉग के जरिए हुआ। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जाता है। अमेरिका का हाल ये है कि वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखें, रिसेंटली उन्होंने एक अमेरिकी रिहा हुआ है, एक अमेरिकी को रिहा करने के लिए 5 तालिबान कमांडर ग्वांतानामो में से रिहा किए गए, 5 तालिबान कमांडर। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कैसा कैसा दोगलापन है, कैसी मुनाफकत है अमेरिका की। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से ले जाने के लिए, असल मसला क्या है मैं आपको बताता चलूँ, असल मसला ये है कि अमरीका तूरखम से लेकर कराची पोर्ट तक ये सेफ पैसेज चाहता है। वो सेफ पैसे ये है उसके लिए महफूज रास्ता कि उसने यहाँ से क्विट करना है। अब क्विट करना है वो चाहता है, जितना एमोनेशन है जितना उनकी फोर्सेस हैं यहाँ से आसानी से निकल जाएं, अफगानिस्तान में कोई बड़ा नुकसान ना हो। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर उन्हीं हालात को भी ख़राब किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान पे अभी आप देखें 2004 में, ये तो हम तो मुसलसल हालत जंग के अंदर हैं, ये कैसी बात करते हैं कि ऑपरेशन अभी हो रहा है। ये तो पहला स्टेप इन्होंने गलत उठाया 2004 में। जनूबी वजीरिस्तान में आपको इलम होगा फौज वहाँ पाकिस्तानी फौज गई है, आज तक वहाँ के हालात नहीं संभले। सवात के अंदर पाकिस्तान के इलाके सवात के अंदर फौज गई, आज तक फौज वहाँ से निकल नहीं सकी। फौज वहाँ मौजूद है, हमारी फौज है, हमारा पाकिस्तान का मुहिब वतन इदारा है, हमारी हमने फौज के साथ खिदमात अदा की हैं। हमने 10,000, ये जो आज बातें करते हैं फलसफा बिगाड़ते हैं, यहाँ पे आके इनसे पूछे कि 10,000 शहदा 71 के अंदर जो मशरकी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, हमने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके। हमने हर मौके पे, अब ये जमात इस्लामी थी जिसने अपनी कुर्बानियां 10,000 लोगों को शहीद करवाया। पाकिस्तानी फौज से हमारी मोहब्बत कम नहीं है, बहुत ज्यादा, लेकिन हम फौज से कहते हैं, हमने फौज से पहले भी कहा कि भी बांग्लादेश में हमने देख लिया मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान की तारीख में दुनिया की तारीख में मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा नाकाम हुए, उनसे फायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा वो मुल्कों की तबाही का बाइस बने। पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही इससे ज्यादा माजी में इतने तलख रहे हैं कि अब कोई नया फौजी ऑपरेशन के हम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। अब जो सवात में अभी तक फौज वहाँ मौजूद है, वहाँ के हालात पुरमन नहीं हुए, वहाँ फौज निकल नहीं सकी। उसके बाद जनूबी वजीरिस्तान में फौज मौजूद थी, हम ये कह रहे थे कि डायलॉग का रास्ता आपने अपनाया, इससे अमरीका इस खित्ते से निकलेगा जनूबी एशिया से, पाकिस्तान को फायदा। और मैं अब ये बताता चलूँ, 9/11 के बाद अमरीका का अफगानिस्तान पर काबज़ होना, उसके पेश नज़र 3-4 मकासद थे जो बड़े अहम थे। पहली बात ये थी कि अमरीका यहाँ बैठ के बस एशिया की रियासतों को कंट्रोल करना चाहता था। दूसरी बात ईरान को वो टफ टाइम देना चाहता था। तीसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा करके ऐसे कि पाकिस्तान चुके आपको मालूम है पहले वाहद न्यूक्लियर एटॉमिक।
चौहान साहब एक सवाल, मैं एक सवाल यही मैं आपसे कर लूं,
मैं आपको बात अपनी मेरी बात काइंडली जरा मुकम्मल होने दे। पाकिस्तान की चूंकि वाहद मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत थी, उन्हें ये खतरा था कि ये एटम बम जो है ये इस्लामिक बम है, इसलिए पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार देने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जो सारे हालात खराब किए जा रहे हैं। अब आप देखें कि आखिरी जो मैं आपसे बात इस हवाले से करूं कि अभी सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई है, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदा, आपको पता है कि इसकी इसका कब आगाज हुआ, जरदारी दौर में जब इस पे दस्तखत किए गए साइन हुआ, उसके बाद यह नवाज उसकी डाली। आज भी अमेरिका को सबसे बड़ी रुकावट है, वो कहता है कि ईरान से सस्ती कुदरती गैस ना खरीदो, इंडिया से महंगी बिजली खरीदो। हमारा मुफाद ये है कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क ईरान है, हमारा हमसाया मुल्क, हमारे उससे तारीखी रिश्ते हैं, हमारे उससे दीनी रिश्ते हैं, हम उसके साथ हमारे ताल्लुकात पहले ही बेहतर थे, आज भी बेहतर होने चाहिए, लेकिन अमरीका ईरान के साथ हमें गैस पाइप, अब मैं आपको बता दूं अगला उसका हदफ क्या है, वो चाहता है किसी भी सूरत पाकिस्तान का ईरान के साथ कुदरती गैस का मुआहदा ना आगे बढ़े। और पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर दबाव डाला, इंडिया भी इस मुआहदे में शामिल था, इंडिया को दबाव देकर निकाला गया कि वो कुदरती गैस के मुआहदे से निकल जाए, इंडिया को निकाल पाके उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान कुदरती गैस ना दे, ईरान भी खुशहाल ना हो, पाकिस्तान भी खुशहाल ना हो, अमरीका का यहाँ एजेंडा चले। अमरीका ने जो तबाही मचानी थी मचा दी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका का भी अशर होगा, पाकिस्तान की फौज इंशाल्लाह उसको पता है, और हमारी फौज का हमारी दुआएं अपनी फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। कि हम कहते हैं कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में, चाहे वो रियासती दहशतगर्दी हो चाहे ग्रोही दहशतगर्दी हो, उसको खत्म होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फौज को इसको अंदाजा हो गया है, और ये अमरीका यहाँ पे हालात खराब करके अपने मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। और नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। इसी के साथ हम अपने साथियों से ये भी पूछना चाहेंगे कि वक्त में इजाफा हो सकता है या नहीं, अगर वक्त बढ़ सकता हो तो हमें इसकी इत्तला दी जाए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। गुफ्तगू हो रही है शमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन के बारे में, अगरचे मिनहाजुल कुरान के सदर दफ्तर पर के ख़िलाफ़ जो पुलिस ने कार्रवाई की उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन शायद आज उसके बारे में गुफ्तगू का वक्त ना मिले। चौहान साहब, जनाब आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा ये किया कि बांग्लादेश में जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें फ़ौज का जो ऑपरेशन था उसका तल्ख तजुर्बा आपके सामने है, इसलिए आप किसी भी खित्ते में फ़ौज के ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शिमाली वज़ीरिस्तान और उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान के हालात एक जैसे हैं, या दोनों में जो ऑपरेशन किया जा रहा है दोनों की नौइयत एक है? दो मिनट में हम इसका जवाब चाहेंगे आपसे।
देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी बात जो मैं पूरी फॉलो कर गया हूं, आपने जो बात की है मशरकी पाकिस्तान का, सुन लें कि बांग्लादेश उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने जो 6 नुकात दिए थे, हमने उन नुकात के, जमात ने उन नुकात की हमायत की थी, और जमात ने कहा था, जमात इस्लामी का मुतालबा ये था कि उनका उनको मैंडेट ज़्यादा मिला है, इसलिए हुकूमत उनके हवाले की जाए। हमारी ये हमारा ये मुतालबा था और हम उसके साथ उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब ये बांग्लादेश की सूरत समझ लें, मशरकी पाकिस्तान, जब मशरकी पाकिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व हुआ, मुक्ति बाहनी इन्वॉल्व हुई, इंडिया ने वहाँ पे अंदर मुदाखलत की, अपने लोग भेजे, तो वहाँ पाकिस्तानी फौज के जो शाना बशाना लोग खड़े हुए, पाकिस्तानी जो हुबुल वतनी के जज्बे के तहत, वो वही लोग थे जिनमें जमात इस्लामी के 10,000 शहदा भी थे, और हमने अपने सरों की फसल कटाई इस मुल्क की सालमियत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम तैयार हैं, हमें फख्र है इस बात पे कि पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर हमने माजी के अंदर कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी कोई वक्त बुरा वक्त आया तो कुर्बानी देंगे। लेकिन एक चीज़ हम इसी वाले से कहते हैं, शमाली वज़ीरिस्तान की सूरत मुख्तलिफ है। यहाँ अमरीका 9/11, मुझे ये बताएं आप कि 9/11 से पहले पाकिस्तान के अंदर एक खुदकुश बम धमाका नहीं था, कोई सुइसाइड बमिंग नहीं थी। 9/11 के बाद ये अमरीकी जंग का तोहफा है जो इस खित्ते को मिला है, जनूबी एशिया को मिला है। पाकिस्तान के हालात ख़राब किए हैं, दीगर ममालक के जो करीबी उनके हालात ख़राब किए गए, आपस में लड़ाया गया। अभी आप देखें बलूचिस्तान के हमारे हालात ख़राब किए गए, बलूचिस्तान की एक ऐसी पट्टी है जो ईरान के साथ लगती है, और आपको याद होगा के ईरान के साथ हमें मालूम है चुके इस मामले में, और ये पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला भी और मौजूदा वजीर दाखिला भी ये कह चुके हैं, बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये इसमें इंडिया, इसमें अमरीकी CIA, इसमें मोसाद मुलव्वज़ है, और ये हालात इसलिए पाकिस्तान के और ये बलूचिस्तान के साथ जो सरहदी इलाका है ईरान का, ये इन्होंने इसलिए हालात पैदा किए कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी हालात बहुत ख़राब हो जाएँ, और पाकिस्तान ईरान के साथ जो मुस्तकबिल में उसके अजायम में पाकिस्तान उसके बिल के साथ आगे बढ़ना चाहता है भाइयों की तरह, उसको भी न बढ़ने दिया जाए। और कुदरती गैस का मामला जो है अमरीका,
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौहान साहब,
उसने जानबूझ के कोशिश की
जी। शुक्रिया चौहान साहब। और आगा साहब, चौहान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई होगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? दो मिनट में अगर आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे।
देखिए बात है कि उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है उन ख्यालात को हमें उसको बड़ा एहतराम की निगाह से देखना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात का वो इदराक नहीं है कि ये तहरीक तालिबान 2007 में CIA ने बनाई थी, और ये CIA ही की वजह से ये लोग इतनी बड़ी उनको ताकत मिली, उनको असलाह मिला। फिर इसके अंदर और भी ममालिक शामिल हैं जिनका काम बुनियादी तौर पर यही था कि पाकिस्तान को जो है ना इतना ज़्यादा मजबूत किया जाए, इतना ज़्यादा मुजमहल किया जाए कि हम इनके एटमी असासों पर कब्जा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है 57 इस्लामी मुल्क में जिसमें कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं इस वक्त भी जो मुख्तलिफ शोबे में कर रहे हैं इस खित्ते में उनका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल खराब है, और इन तालिबान की वजह से पूरे मुल्क और माशरे में अफरा तफरी है, वरना आप करेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर सुकून हो जाए तो यही साइंसदान जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबे में काम कर रहे हैं ये अपना एक बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं। बात असल ये है कि लोगों को तारीख का मुताला करना चाहिए और जुनूबी शुमाली वजिस्तान का और मशरकी पाकिस्तान से कोई मुमासलत नहीं है और ना ही आयरलैंड का और जुनूबी वजिस्तान का कोई मुकाबला है। ये जो लोग शुमाली वजिस्तान में हैं ये जाहिल लोग हैं और ये दूसरों का आलाकार बन के पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें इंसानियत नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज के गर्दन काट के उनको फुटबॉल बनाते हैं, ये इंसानियत के नाम पे ये का टीका है। पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये इनकी क्या जहर है, ये कौन लोग हैं। तो आप इनके बारे में जो भी चौहान साहब कहें वो उनका हक है बोलने का, लेकिन जो तारीख है और जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये हकायक ऐसे हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। आज पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जो फैसला किया है ये बहुत सोच समझ के किया। 5 साल से पाकिस्तान को ये लहूलान कहें, पाकिस्तान का एक और सवाल में हुआ ऑपरेशन राह रास्त और अब ये ऑपरेशन जो है गस्प के पास से शुरू किया गया है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सवात में हम लोग जाते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जिसका चौहान साहब जिक्र कर रहे हैं, वहाँ अमन कायम हो चुका है। इक्का दुक्का दहशत गर्द जरूर
बहुत बहुत
है,
शुक्रिया
एक जो अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं और एक बार फिर वहाँ पर एक अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वहाँ पे सेहत फरोख पा रही है, वहाँ पे बाजार खुल चुके हैं, वहाँ की आमदनी बढ़ चुकी है लोगों की और लोग बहुत खुश हैं। और ये भी मैं बता दूँ कि
बहुत बहुत शुक्रिया,
सवात के लोग इनसे इतने ज्यादा मुतनफिर हैं कि अगर इनका नाम लें तो वहीं पर इनको पुलिस पर इत्तला करके उनको जेल में डाल देते हैं।
बहुत
ये सूरत हाल जो है ना
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। अगर कैसर इमाम साहब से हमारा राबता बरकरार है तो कैसर इमाम साहब जनाब, क्या तालिबान के बहुत से गुरु हैं, क्या उनको अच्छे और बुरे तालिबान में तकसीम किया जा सकता है? 2 मिनट में हम जवाब चाहते हैं।
मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है, बहुत ये कहा जाता है कि जी जो अच्छे तालिबान हैं वो मुज़ाकरात उनसे किए जाएं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मुज़ाकरात किस बात पर होने हैं? अगर कुछ लोग अच्छे हैं तो वो आम लोगों में शामिल हो जाएं, उनसे बातचीत करके क्या उनको शामिल कर रहे हैं मुल्क और कौम में? मेरे ख्याल में ये बात गलत है। दूसरी बात ये कि अगर आप हर डाकू से हर चोर से मुज़ाकरात करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के जेल खाने सारे बंद करने पड़ेंगे, ये बात भी सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जितनी भी अस्करी पसंद तालिबान के जो सियासी विंग हैं पाकिस्तान की, जो बहुत सी दीनी जमातें यही काम करती हैं, वो उन दर हकीकत सियासी विंग हैं। मैं समझता हूँ ये बात जो है ये सिस्टम सही नहीं है, ये चल नहीं सकता। दो दो तीन तीन किस्म की हुकूमतें नहीं चल सकती
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, लंदन से रबते में प्रॉब्लम भी आ रही है जी। चौहान साहब क्या कहेंगे आप कैसर इमाम साहब की गुफ्तगू के बारे में, मुज़ाकरात किस बात पर होने चाहिए? 2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पहले तो एक आपको ऑनलाइन होने में टाइम थोड़ा सा मसला हुआ, मेरी मुझे बात का मौका दें, थोड़ी सी मेरी बात पूरी मुकम्मल हुई।
वक्त हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का रह गया है
जी। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है कि 2014 में अमेरिका अफगानिस्तान से क्विट कर रहा है, अमरीका निकल रहा है और अमरीकी फोर्सेज भी वहां से निकल रही है। तकरीबन 2.5 लाख फौज है, 1 लाख अमेरिकन फौज है, 1.5 लाख अमेरिकन है, 1 लाख नेटो की फोर्सेज है, ये टोटल 2.5 लाख बनती है और यहाँ 7-8 हजार भी छोड़ गए, तो जो 2.5 लाख फौज भी अफगानिस्तान को नहीं संभाल सकी। और ओबामा साहब ने तो आपके सामने यहाँ आके इंकशाफ कर दिया है कि हमारा अमन अमान कायम रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ लेने के आए थे, आप अफगानिस्तान को तहस नहस करके चले गए, आपने कारपेट बमबारी की, आपने तबाही कर दी, लाखों अफगानियों कत्ल किया, लाखों इराकियों को कत्ल कर दिया, आपने यहाँ से तबाही के अलावा हमें क्या दिया? और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूँ, 2014 में चूंकि ये निकलने वाले हैं यहाँ से, इसलिए ये हमारी फोर्सेज को, हमें पाकिस्तान की सिविल और अस्की क्यादत का एक फर्ज बनता है कि इस 5-6 माह जो अगले हैं बड़े अहम हैं और ये इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत पर बड़े भारी हैं। हालात अंदरूनी भी ठीक नहीं है, बैरूनी भी ठीक नहीं है, हमें बड़ी हिकमत और दानाई से काम लेना चाहिए, जज्बाती होकर मामला खराब नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में मजीद इंतशार फैले और अमरीका का एजेंडा कामयाब हो। हमें चाहिए कि अफगानिस्तान से अमरीका का निकलने का 2-3 माह में उन्होंने निकलने का प्रोसेस शुरू करना है, यहाँ से निकल जाए जाना है, जहाँ बात अभी हो रही थी आगा साहब ने बात की, कैसर इमाम साहब, मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि सवाद के
शुक्रिया कहते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे लेकिन तालिबान ने मुज़ाकरात के साथ धमाके और दहशतगर्दी शुरू कर दी, इन हालात में मुज़ाकरात जारी नहीं रखे जा सकते। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।